الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين یہ سورة نور کی دوسری تیسری آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے یا مشرکہ عورت سے ہی نکاح کرتا ہے اور جو عورت زنا کرنے کی عادت رکھتی ہو یعنی زناکار عورت تو ایسی عورت سے وہی مرد نکاح کرتا ہے جو خود زنا کرنے والا ہو یا مشرک ہو اور یہ بات ایمان والوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نظام فطرت کو بیان فرمایا ہے پہلی بات یہ سمجھ لو کہ جس انسان کی عادت ہوتی ہے زنا کرنے کی اس کا مزاج زنا کا بنا ہوا ہوتا ہے اس کی عادت بگڑ چکی ہو خراب ہو گئی ہو ایسے آدمی کو مزہ بھی آتا ہے زنا کرنے ہی میں ایسے انسان کو حلال کام میں لذت اور مزہ نہیں آتی یہ یہ سزا سمجھو اللہ کی طرف سے کہ زنا کرتے کرتے عادت بگڑ گئی، عادت خراب ہو گئی. اس کا مقصد ہوتا ہے اپنی شہوت کو پورا کرنا، خواہش کو پورا کرنا. ایسا آدمی اگر شادی کرنے کا ارادہ بھی کرے تو بھی اس کا مقصد ہوتا ہے خواہش کو پورا کرنا. حالانکہ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اچھے اچھے مقصد رکھے ہیں. نکاح کا ایک پاکیزہ مقصد یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد نصیب ہوئے. نکاح کا ایک مبارک مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوئے. نکاح کا ایک پاکیزہ مقصد یہ ہے کہ انسان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہوئے، کہ آدمی پاک رہے گئے. یہ سب مبارک مقصد ہیں نکاح کے. لیکن جس آدمی کی عادت بن گئی زنا کی، اس کا خیال، اس کی سوچ، اس کی طبیعت ہمیشہ شہوت پوری کرنے کی طرف لگی رہتی ہے، کسی طرح بھی میری شہوت پوری ہو رہی ہے. حالانکہ یہ آدمی اگر نکاح کرے، شادی کرے، تو شادی کی برکت سے بھی شہوت تو پوری ہوگی، خواہش پوری ہوگی. لیکن اس کا تو مزاج بگڑ گیا ہے، عادت بگڑ گئی، بس زنا اس کا مقصد. اب ایسا آدمی اگر نکاح بھی کرتا ہے تو وہ مقصد ہے اس کا شہوت کو پورا کرنا. اور دیکھو ایک بات ہے خطرناک، ہم نے خود دنیا میں اس کے واقعات دیکھے ہیں کہ جو مرد زنا کی عادت رکھتا ہو وہ شادی کے واسطے بھی ایسی ہی عورت کو پسند کرتا ہے جو عورت زنا کرانے والی ہو، اس کو نیک عورت کی طرف اس کی طبیعت نہیں جاتی. اچھی اور صالحہ عورت کی طرف اس کی طبیعت نہیں جاتی. یہ قدرتی چیز ہے. یہی حال ہے عورت کا بھی کہ جس عورت کو زنا کی، گناہ کی، برائی کی عادت پڑ چکی ہو، جب شادی کا موقع آتا ہے تو اس کی چاہت، اس کی پسند وہ بھی ایسے ہی زنا والے مردوں کی طرف ہوتی ہے، نیک اور اچھے مردوں کی طرف ان کی طبیعت جاتی نہیں ہے. یہ عجیب حال ہے. نیک بیوی نیک شوہر پسند کرے گا، اور جو عورت نیک ہوگی وہ نیک شوہر کو پسند کرے گی. ایک آدمی انگلینڈ سے شادی کرنے آیا ہوا تھا، کئی لڑکیاں دیکھی. اس کے بعد اس نے ایک لڑکی پسند کی، اس کو بتایا گیا باقاعدہ تحقیق کر کے کہ دیکھو یہ جس لڑکی کو تم نے پسند کیا ہے اس کا کیریکٹر تھوڑا لوز ہے، اس کے لیے کچھ غلط غلط باتیں سامنے آئی ہے. تو اس لڑکے نے کیا جواب دیا کہ میں بھی تو ایسا ہی ہوں، मेरा भी ऐसा ही हाल है। जब ये कारगुजारी, मैंने ही निकाह पढ़ाया था उनका, जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये अल्लाह, ये तो तेरे कलाम की, कुरान की बात है जो सामने आ रही है, कि खुद अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है कि जिन लोगों का मिजाज जिना का, गुनाह का होता है, का उनका जोर भी ऐसे ही लोगों के साथ लगता है। अब ऐसे लोगों को कोई नेक लड़की दिखाओ, पसंद नहीं आती है, वो उसको पसंद नहीं करते। बाकायदा ऐसे वाकियात हुए कि निकाह के लिए बुरके वाली नमाजी लड़की बताई गई तो ना कहते थे कि नहीं, ऐसी बुरके वाली लड़की हमको पसंद नहीं है, ऐसी नेक और दीनदार लड़की हमको पसंद नहीं है, साफ ना कहते थे। और यही हाल लड़कियों का भी, कि उनको अगर नेक और दीनदार लड़के बताए जाए तो वो ना कह देते हैं कि ऐसे शौहर हमको नहीं चाहिए। तो जैसी मिजाज, जैसी आदत, इंसान अपनी शादी के लिए भी ऐसे कोई पसंद करता है। एक लड़की, रिश्ता तय हुआ, वीजा मिल गई, शादी के लिए इंग्लैंड गई, वह लंदन एयरपोर्ट के ऊपर उतरी तो जिस लड़के से रिश्ता हुआ था वो लेने आया था उसको, और भी लोग लेने आए, रिश्तेदार भी आए थे। वो लड़के को दाढ़ी थी, सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद पर उस लड़की ने ना कह दिया मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी और वापस आ गई, सिर्फ दाढ़ी की बुनियाद के ऊपर। ये क्या चीज है जो यहां फितरत का कानून अल्लाह ने बतलाया है कि जिनका मिजाज जिना का हो जाता है उनको शादी के लिए भी ऐसी लड़की की तरफ ध्यान जाता है। अल्लाह ऐसी गंदे मिजाज से, गंदी सोच से हमारी हिफाजत करना। एक दूसरा नुक्ता समझो, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि एक मर्द ने शादी की, जिस लड़की से शादी की उस लड़की के बारे में मालूम है कि ये बदचलन है, आउटलाइन है, शादी कर ली, हमको मालूम है। अब शादी हो चुकी, उसके बावजूद भी वो लड़की अगर गलत लाइन पर है और शौहर को मालूम है, फिर भी शौहर जानबूझ करके होने दे रहे, किसी भी मसलहत से, वो जाने उसकी मसलहत जाने, लेकिन एक शौहर को मालूम है कि मेरी बीवी बदचलन है, आउटलाइन है, फिर भी वो होने दे रहे, तो वो औरत भी गुनहगार और वो शौहर भी गुनहगार। हराम काम कर रहा है वो शौहर भी, कि बीवी का आउटलाइन होना मालूम है फिर भी वो होने दे रहा है, ये शौहर भी हराम काम का गुनाह कर रहा है। उस शौहर की जिम्मेदारी फौरन अपनी बीवी को रोक देवे, ये तो क्या गलत काम कर रही है, फौरन रोको उसको। यही हाल औरत का भी है कि एक औरत ने एक मर्द से शादी की, अब पता चला कि ये मर्द तो आउट लाइन है, गलत लाइन पर है, बीवी को मालूम है मेरा शौहर आउट लाइन है, फिर भी वो चुपचाप बैठी रहे और होने देवे शौहर को, तो शौहर को तो गुनाह होगा ही होगा, लेकिन ये बीवी को भी हराम का गुनाह होगा कि वो शौहर को चलने दे रही है, रोकना चाहिए। दोनों की जिम्मेदारी है, शौहर बीवी को आउटलाइन से रोके, बीवी शौहर को आउटलाइन से रोके, दोनों जिम्मेदार है। एक तीसरी बात समझो, वो भी बहुत अहम मसला है, कि जिस वक्त पर शादी के लिए जोड़ को पसंद करना हो, मसलन एक लड़का तलाश कर रहा है कि मुझे लड़की चाहिए, अब वो जिस लड़की को उसने पसंद किया उस लड़की के बारे में मालूम है कि ये गलत लाइन की लड़की है, फिर भी वो उसी को पसंद करे कि नहीं मुझे इसी से शादी करनी है, मालूम है कि ये आउटलाइन है, क्यों? मालदार की लड़की है या बहुत खूबसूरत है या जितना है, मैंने डिग्री ली है, मैं जितना पढ़ा हुआ हूं इतनी वो पढ़ी हुई है, मैं भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, वो भी हॉस्पिटल खोले मैं भी हॉस्पिटल खोलूं, भले वो आउटलाइन की है। तो एक मर्द को मालूम है कि मैंने जिस लड़की को पसंद किया है अपनी शादी के लिए वो आउटलाइन है, उसके बावजूद भी उसको पसंद करना और उसके साथ निकाह का रिश्ता तय करना ये हराम है, गुनाह का काम है। हाँ, शादी करेगा तो शादी तो हो जाएगी, जायज हो जाएगी, लेकिन ऐसी लड़की को पसंद करना ये भी हराम है, मालूम होने के बावजूद। यही हाल है लड़की का भी कि एक लड़की को मालूम है कि जिस लड़के से मेरा एंगेजमेंट हो रहा है, मेरा रिश्ता हो रहा है, वो ऐसा गलत लाइन का है, आउट लाइन का है, लफड़े वाला है, उसके बावजूद भी उसी लड़के को पसंद करे कि नहीं मैं शादी इसी से करूं, तो ये भी हराम है उस लड़की के वास्ते कि तुझे मालूम है कि आउटलाइन लड़का है फिर भी तू उसी को पसंद कर रही है, हराम। हां, अगर तोबा कर ले कि चलो आज तक जिंदगी आउटलाइन गुजारी, अब निकाह के बाद मैं तोबा कर लेता हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा, या लड़की तोबा कर ले तो अलग है, तोबा कर ले लाइन ठीक कर ले अपने आप को हिदायत के रास्ते पर ले आवे वो अलग बात है, बाकी जानबूझ करके ऐसी गंदगी में पड़ना चाहिए नहीं। तो ये अजीब चीज है कि जिनकी आदत बिगड़ गई, जिनका मिजाज बिगड़ गया, जिनकी सोच बिगड़ गई और जिना वाली आदत हो गई, चाहे मर्द चाहे औरत, अब वो अपनी शादी के लिए ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। अल्लाह हमारी सोच को, हमारे मिजाज को पाकीजा बनाए और ऐसी गंदी सोच से अल्लाह ताला उम्मत की हिफाजत फरमाए। والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون। الله تعالى يشاد فرماتے ہیں कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं यानी जिना की, फिर वो चार गवाह न लावे तो ऐसे लोगों को ऐसी सपाटे मारो, 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी भी कबूल नहीं होगी और वो खुद फासिक लोग हैं, नाफरमान लोग हैं। इल्लल्लज़ीन ताबू मिन बादी ज़ालिका व असलहू फइन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। हां, जो लोग तोबा कर ले और अपनी हालत को सुधार ले तो अल्लाह बड़े बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। ये देखो भाई, एक बड़ा खतरनाक कानून है मैंने रमजान में जब ये सूरत शुरू हुई थी तभी आपको बतला दिया था कि इस सूरत में शरीयत के सख्त कानूनों को अल्लाह ने बयान फरमाया है, बहुत भारी एक से एक कानून का। बहुत से लोग अपनी बीवी के ऊपर जीना की तोहमत लगाते हैं, आदत पड़ी हुई है बहुत से मर्दों को, बात शक की मिजाज होते हैं, औरतों पर शक ही करते रहते हैं, कहीं गई नहीं शक, कहां गई थी, किसको मिलने गई थी, फोन पर बात कर रही है बिचारी फिर भी शक, किससे बात कर रही है, किसके कांटेक्ट में, शक की मिजाज के लोग। और बास तो ऐसे होते हैं एक कदम आगे बढ़कर अपनी बीवी के ऊपर जीना की तोहमत लगा देते हैं, तूने जीना किया किसी के साथ, तू किसी के साथ लफड़े में है, तेरा किसी के साथ कांटेक्ट है, तोहमत लगा देते हैं जीना। देखो तोहमत लगाना चाहे जीना की चाहे किसी और गुनाह की, हराम है, गुनाह है, कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह। बहुत से लोग दूसरी चीजों को भी तोहमत लगाते रहते हैं किसी मुसलमान के ऊपर, तूने चोरी की है, तूने शराब पी है, तू भी आज खाता है, तूने जो है हमारे घर में झगड़े करवाए, तूने जादू करवा दिया, ये तोहमत, किसी भी चीज की तोहमत, जिना की तोहमत या किसी और चीज की तोहमत लगाना ये हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है, गीबत से भी खतरनाक है तोहमत लगाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाते हैं, अपनी बीवी या कोई और औरत, पराई औरत, ये बहुत बुरी चीज है, अल्लाह उससे नाराज होते हैं। अब दो अलग अलग मसले अल्लाह आयत में बयान फरमाते, पहला मसला कि अगर किसी पराई औरत के ऊपर जिना की तोहमत लगाए, किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की बीवी को कह दिया कि इसने जिना किया था, तो शरीयत में कानून ये है कि अगर तुम जिना की किसी पर तोहमत लगाओ तो चार गवाह तुम्हारे पास होने चाहिए, चार साक्षी कि जिन लोगों ने आंख से जिना देखा होवे, ऐसे चार साक्षी होने चाहिए। अब तुम्हारे पास गवाह नहीं है, विटनेस नहीं, साक्षी नहीं, और तुमने ऐसे ही तोहमत लगा दी किसी औरत पर कि ये जिना किया इसने, और चार गवाह नहीं है, तो ऐसे तोहमत लगाने वालों को तीन सजा दी जाएगी, तीन सजा। देखो जिना की तोहमत कोई आसान गुना नहीं है, याद रख लो, तीन तीन सजा होगी। पहली सजा क्या, ऐसी सपाटे मारे जाएंगे, पकड़ के मारो उसको कि शर्म नहीं आई किसी मुसलमान औरत पर तोहमत लगाते हुए कि इसने जिना किया है, ऐसी सपाटे मारो। दूसरी सजा ये कि ये तोहमत लगाने वाला आइंदा किसी भी चीज की गवाही देवे उसकी गवाही हम कबूल नहीं करेंगे, ठुकरा देंगे। वो गवाही लेके आया, मुफ्ती साहब मैंने चांद देखा है, हम कहेंगे चल निकल तेरी गवाही कबूल नहीं, तू तो मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाता फिरता है, हम तेरी गवाही कबूल नहीं करेंगे। किसी भी केस में, किसी भी मामले में वो गवाही लेके आवे, ऐसे आदमी की गवाही कबूल करेंगे नहीं कि तुझे तेरी जबान पर कंट्रोल कहां है, काबू नहीं रखता, तू तो मुसलमान औरतों पर तोहमत लगाता फिरता है। और तीसरी सजा अल्लाह के यहां उसके लिए जहन्नम की आग है, तीन तीन सजा उसके लिए। इसीलिए एक बात तय कर लो किसी के ऊपर जिना की तोहमत लगानी नहीं, बिल्कुल नहीं। नंबर दो, अगर किसी को आंख से जिना करते देखो तो चार गवाह अगर तुम्हारे पास है तो इस्लामी अदालत में, कोर्ट में ले जाओ उसको, और अगर गवाह नहीं है तो चुपचाप बैठे रहो। और अगर देखा आपने कि ये गुनाह बहुत बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, और गवाह तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर एक तीसरी शक्ल ये है कि काजी के पास कोर्ट में जाकर यूं कहो कि मैंने इस मर्द को देखा, उस औरत को देखा कि वो बगैर पर्दे के आपस में मिल रहे थे। शरीयत का हुक्म है कोई पराया मर्द, कोई पराई औरत आपस में मिले नहीं, मुलाकात नहीं करे, लेकिन मैंने इनको देखा था कि वो मिल रहे थे। जिना का लफ्ज मत बोलना। काजी अपने तौर पर जो सजा देना हो, ताजीर करना हो, उनको बुला करके सजा दे देगा कि तुम्हारे लिए बात आई थी कि तुम जो है वहां फुला जगह पर तन्हाई में थे, एकांत में थे, क्या कर रहे थे, वो काजी करेगा, अपने नहीं पढ़ेगा। और उसके अलावा दूसरे किसी गुनाह की भी किसी मुसलमान पर तोहमत नहीं लगाने की कि तू चोर है, तू शराबी है, तू ये है, तू वो है, किसी पर नहीं। ये तोहमत बहुत खतरनाक गुनाह। आज तो हमने इस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा, बात बात में लोगों पे तोहमत लगाते हैं, बात बात में तोहमत। तो फुलाना कहो होता है ऐसा, तूने देखा है वो ऐसा? नहीं, किसी ने कहा हम मान लेते और तोहमत लगा देते। इसलिए किसी मुसलमान मर्द हो या औरत, उस पर किसी बुरे काम की तोहमत लगानी नहीं, और खास करके जिना की तो बिल्कुल नहीं। और जिसने किसी मुसलमान औरत पर, जो आजाद हो, अकलमंद हो, बालिग हो और आज तक अकीफ और पाक दामन हो, उस पर तोहमत लगाई और चार गवाह नहीं, तो उस पर ऐसी सपाटे मारने का अल्लाह का हुक्म है कि मारो उसको ऐसी सपाटे। हां, अगर वो तोबा कर लेवे तोहमत लगाने के बाद कि अल्लाह मैंने तोहमत लगाई, मुझे माफ कर दे, और जिस पर तोहमत लगाई थी उससे भी माफी मांग लेवे कि भाई मैंने तेरे पर तोहमत लगाई थी, बहन मैंने तेरे ऊपर तोहमत लगाई थी, माफ कर दे, तो अल्लाह के यहां जहन्नम की सजा माफ हो जाएगी, जहन्नम से छुटकारा हो जाएगा। बाकी उसकी गवाही तो कबूल होगी नहीं, वो तो हमेशा के लिए गई। इसलिए याद रख लो, अगर जिंदगी में कभी किसी पर तोहमत लगा दी है तो दुनिया में उससे माफी मांग लो जाकर के। किसी मर्द पर या किसी औरत पर तोहमत लगाई थी, जिना की, चोरी की, किसी भी गलत काम की, तो दुनिया में माफी मांग लो, वरना आखिरत के अंदर उसकी सजा बहुत खतरनाक है, बहुत बुरी उसकी सजा है। इसीलिए एक सबक तो ये कि तोहमत लगाना नहीं, और आज तक अगर लगा दिए किसी पर तो पहली फुर्सत में माफी मांग लो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो, वरना तोहमत का गुनाह बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। अल्लाह ताला हमारे पूरे समाज को, पूरे माशरे को ये तोहमत की बीमारी से बचने की तौफीक अता करना। ऐसी बला चल पड़ी, और खास तौर पर ये जादू वगैरह के मामले में तो बस अल्लाह हिफाजत में रखे। कोई बीमार हुआ नहीं, कोई तकलीफ हुई नहीं कि फौरन चालू के किसी ने हमारे ऊपर जादू करवा दिया। और ये अल्लाह की पनाह इन बापुओं से, सड़क छाप बापुओं से, कि जो घरों में लड़ाई पैदा करवाते हैं। बापू के पास कोई तावीज लेने गया नहीं कि वह नाम देते कि फुलाने ने करवाया, फुलाने रिश्तेदार ने करवाया, अब घरों में झगड़े चाहे। ये बहुत बुरा गुनाह है, जादू कराने की तोहमत लगाना भी बुरा गुनाह, और किसी का नाम लेना ये भी तोहमत, ये भी गुनाह। इससे अपने आप को बचाओ।